عہد عتیق میں خداوند عالم نے فرعونیوں کی اسارت اور غلامی میں گرفتار قوم بنی اسرائیل کے درمیان حضرت موسیٰ کو نبی بنا کے بھیجا تاکہ انہیں طرح طرح کی جہالتوں اور فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر انہیں مصر سے نکال کر سرزمین موت کی جانب ہدایت کرے۔ اس سفر میں بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی بہت سے عظیم شان معجزوں کا مشاہدہ کیا، جیسے کہ دریا کا شگافتہ کرنا اور فرعونیوں کی ہلاکت۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر تشریف لے گئے تاکہ بنی اسرائیل کے لیے خداوند عالم کے فرامین کو دریافت کرے، لیکن واپسی کے دوران حضرت نے اپنی نافرمان قوم کو سامری کے بت کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بد دعا دی تاکہ کبھی بھی ان کے قدم سرزمین موعود پر نہ جمیں۔ ان کی وفات کے بعد 10 فرامین پر مشتمل کتیبہ اور تابوت عہد نامی کے ایک صندوق کی، جو کہ وہی صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنے لخت جگر کو رکھ کے دریائے نیل کے حوالے کر دیا تھا، حضرت موسیٰ کی یادگار کے طور پر بنی اسرائیل کے درمیان حفاظت ہوتی رہی۔ حضرت موسیٰ کے بعد بھی بنی اسرائیل کا وتیرہ نافرمانی ہی رہا۔ خداوند عالم نے ان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں ان کی زندگیوں کو ان کے سیاہ دل کی طرح تاریک کر دیا۔ وہ ہمیشہ سرزمین موت کی حسرت میں، شدید تفرقے اور انتشار کے عالم میں اس دفعہ کنانیوں کی اسرات اور غلامی میں گرفتار ہو گئے۔ اس دور میں شیلو نامی ایک چھوٹے سے شہر کی مرکزی عبادت گاہ میں تابوت عہد کی نگہداشت کی جا رہی تھی۔ شہر شیلو سن 1050 سال قبل مسیح۔
سموئیل، سموئیل کہاں ہو؟
جی کاہن اعظم، میں آ رہا ہوں۔
خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، میری بات غور سے سنو۔ اے تابوت عہد، تو نے بہت سی مصیبتوں میں بنی اسرائیل کی مدد کی ہے، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے۔ یقین کرو یہ تابوت بہت جلد ہماری دعاؤں کو قبول کروا دے گا۔ اے تابوت مقدس، ہم پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے۔ دیکھو، تابوت نے ہماری دعاؤں کو سن لیا۔ اے سخاوت مند تابوت، اپنی نعمتوں سے نواز کر ایک بار پھر ہمیں تو نے احسان مند کر دیا۔ تو اے بزرگان شیلو، تابوت کی عطاؤں کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا، پرانی شراب پیو۔ شراب پیو اور مست رہو بنی اسرائیل۔ یہ سال آمدنیوں اور نعمتوں کا سال ہے۔ کاہن اعظم، آپ نے تو ہمیں ڈرا ہی دیا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کنانیوں نے دوبارہ حملہ کر دیا۔
تم لوگوں کو شرم نہیں آتی بالکل بھی؟ عبادت کے وقت گناہوں میں مصروف ہو.
گناہ؟ کون سا گناہ کاہن اعظم؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یہاں تو کوئی بھی گناہگار نہیں ہے.
یہ سب
سلام.
اچھا یہ لو، یہ بیچارے تو آرام کر رہے ہیں اور میں ان کے لیے شربت پیش کر رہا ہوں. یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟
اب خدا ہی تم لوگوں پر رحم کرے گا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ حضرت موسیٰ کے تابوت عہد کو تم نے بازیچے میں بدل کر رکھ دیا ہے.
بازی چاہو خدا مجھے مار دے جو میں نے ایسا کیا ہو. تو میں نے تو تابوت کو اس لیے یہاں رکھا ہے تاکہ ہمیشہ خدا کی یاد میں مصروف رہیں، اور اس سے نا آمدنی میں اضافہ بھی ہوتا ہے. کاہن اعظم دیکھیں نا لوگ کتنے خوش ہیں.
شرم سے ڈوب مرو. کاہن اعظم کا مذاق اڑا رہے ہو خداوند عالم کے نمائندے کا؟
سیموئیل تماشا تو اور بھی زبردست ہو گیا.
دشمن سے جہاد اور خدا کی اطاعت کی بجائے حتیٰ کے تابوت عہد کو بھی اپنا بازیچہ بنا دیا. تم نادان ہو یا نادانی کا اظہار کر رہے ہو؟
کاہن کے بچے، لگتا ہے تمہیں معلوم نہیں کہ کس سے بات کر رہے ہو. ہم سب بنی اسرائیل اور شہر شیلو کے بزرگوں میں سے ہیں.
سیموئیل بس کرو بیٹا، اب اتنا زیادہ غصہ مت کرو.
جو حکم.
شیلو، وہ شہر جس پر بنی اسرائیل کا خدا اب بھی اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے.
وہ بھی صرف ان کنانیوں کے فائدے اور نفع کے لیے. بس
ان ذلیل و خوار کتوں کی کاشتی ہوئی چیزیں ہم جیسی عظیم قوم کے لیے ہی تو ہیں.
کیا ہم احتیاطاً اپنی فوج کو بانٹیں گے نہیں تاکہ مختلف سمتوں سے حملہ کیا جائے؟
احتیاط وہ بھی اس قوم کے لیے؟ یقین رکھو اس وقت ان کے بزرگ مست ہوں گے اور باقی سست ہیں. اپنی کاشت کو زمینوں سے اٹھا چکے ہیں. جلدی پہنچو ورنہ ضائع بھی کر دیں گے وہ.
تو کیا سب کو مار ڈالیں؟
نہیں، صرف اتنا کہ ان کے دلوں میں دہشت باقی رہے. آگے بڑھو.
خدا کی قسم، تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو یہ موسیٰ کی شریعت میں سراسر گناہ ہے. کیا اپنی حقارت نہیں دیکھ رہے ہو؟ کیا نہیں دیکھ رہے ہو کہ دشمن تمہارے اپنوں کو مار رہے ہیں اور قیدی بنا رہے ہیں؟ کب تک حالات ایسے ہی رہیں گے؟ کب تک ہم ان کے ظلم سہتے رہیں گے؟
یہ تم لوگ شور کیوں مچا رہے ہو؟ مجھے نیند آ رہی ہے.
اے کاہن بزرگ، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کنانی بہت طاقتور ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ بھی تو نہیں.
گناہ سے بچو، خدا تم پر غضبناک ہے. کیا تم وہی موسیٰ کی طاقتور قوم ہو جس نے دریاؤں کو چیر کر رکھ دیا تھا؟ خدا کی طرف لوٹ آؤ، طاقتور بن جاؤ گے.
پہلے ہم سے مت الجھو، کیوں کباب میں ہڈی بن رہے ہو؟ جاؤ اپنا کام کرو، سمجھے تم؟
کنانی ہر سال اس موقع پر حملہ کرتے ہیں، کچھ کرو اس سے پہلے کہ قتل کر دیے جاؤ. سنبھل کے سموئل، سنبھل کے سموئل.
اے بہادر سردار، خوش آمدید.
آہ!
अजीब बात है, जितना इन कुत्तों को मारो अगले साल फिर पड़ जाते हैं। सिपाही, वो कुत्ता जो वहां खड़ा है क्या मेरे शिकारी कुत्तों के झुंड के लिए मुनासिब होगा?
नहीं सरदार इनहाश, वो ज्यादा ही मोटा है।
तुम हमारे काहने आजम से इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो जबकि तुम इंसानों को कत्ल करने वाले और उनके अम्वाल के लुटेरे हो।
खुदावंद तू ही रहम कर।
गुस्ताख!
नहीं रुको, तेरा नाम क्या है लड़के?
समुईल हूं, खुदा का बंदा।
ये तुम्हारा बोटे जिस्म वाला तुम्हारा काहने आजम है लेकिन मुझे कुत्ता क्यों लग रहा है?
खड़ा!
देखा लड़के कैसे कुत्ते की तरह मेरे पैरों को चाट रहा है?
बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ।
इस कौम पर तुम्हारे जुल्म सितम का सिलसिला पायदार नहीं रहेगा। एक दिन आएगा जब खुदा का कहर तुम पर पड़ेगा।
ये तलवार ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और तुम्हारा खुदा भी कुछ नहीं कर सकता था, और तलवार मेरे पास है। गुस्ताखों की सजा मौत है। इस बार छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं बहादुरी की कदर करता हूं, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। रखो कि जवान औरतों को कुछ ना, क्योंकि सोने चांदी के अलावा सिर्फ यही हैं जो हमारे बादशाह को खुश कर सकती हैं।
और कोई हुक्म?
यहाँ पर मर्दों की तादाद औरतों से ज्यादा है। जाओ, जितने भी छोटे लड़के हैं सबको खत्म कर दो। हमें इन जानवरों में तवाज़ुन को बरकरार रखना होगा।
जो हुक्म सरकार।
परवरदिगारा, देख इन बेकसों का क्या हाल है।
कब तक हम इस जिल्लत को बर्दाश्त करते रहेंगे?
जब तक ये नादान कौम अपने गुनाहों में डूबी रहेगी, वाजिबात और जिम्मेदारियों की अंजाम दही में कोताही करेगी। जुल्म सितम की इंतहा कर दी।
वो देखिए जरा, खुदा की पनाह। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
हमारी माँ ने हमें यहाँ छुपा दिया है, अभी आती हूँ।
मुझे भूख लग रही है।
माँ ने आपको भेजा है?
आओ चलो, साथ चलते हैं।
कब तक बनी इसराइल के बच्चे यूं ही यतीम होते रहेंगे?
दुआई है दुआई, क्यों अपने बंदों की फरियाद नहीं सुनते? क्या नहीं देखते कि कनानी हम पर जुल्म सितम जा रहे हैं, हमारी औरतों बेटियों को असीर बना रहे हैं? खुदाया कुछ तो कर, कुछ तो कर।
खुदावंदे करीम क्या करेगा और किसके लिए? मैं बरसों से इस इबादतगाह में हूं, लेकिन तुम लोगों के चेहरे मेरे लिए नाआशना है। क्यों और किसके लिए सिर्फ मुश्किलों में ही तुम्हें खुदा याद आता है?
खुदा हमेशा हमारे दिलों में है।
तुम्हारे दिलों में सिर्फ गुनाह है बस।
ये तो मेरी दवा है।
कम से कम इसका ढक्कन तो बंद कर दो, बदबू चारों तरफ फैली हुई है।
क्या तुम अपने फराइज की अंजामदही में कोशा हो? क्या कभी नमाज भी अदा करते हो? क्या हर शंबा के दिन इबादत का हमें दुआ के लिए भी आते हो? क्या खैरात करते हो? दीने मूसा में से तुम्हारे पास बचा क्या है? ताबूते अहद, इसको भी तुम लोगों ने तमाशा और बाजीचा बना दिया। शरीयत मूसा कहाँ है? तौरात कहाँ है? तुम इसलिए जलील और ख्वार हो क्योंकि तुमने खुद यही चाहा है। जिस कदर तुम्हारी हैसियत में इजाफा होता है, गुनाह की अंजाम दही में भी शेर हो जाते हो। तौबा करो, तौबा, ताकि खुदा बंदे आलम दौरे मूसा की अजमत रफ्ता दोबारा तुम्हें अता कर दे।
तुम अपनी औकात तो देखो, अभी कोई हैसियत भी नहीं है और कायने आजम से भी आगे बढ़ गए। तुम हो क्या जो हम बुजुर्गों पर उंगली उठा रहे हो?
चुप रहो, अभी हमारे अजीजों का गम कम नहीं हुआ है जो इस कदर हंगामा कर रहे हो। समोइल, लोग आजादार हैं, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। ऐ लोगों, अपने मुर्दों की मगफरत के लिए दुआ करो, खैरात बांटो, ताकि रहमत खुदा उनके शामिल हाल हो। खुदा का शुक्र है, हालांकि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, फिर भी लोगों की सखावत बढ़ गई है। अब मैं ज्यादा लोगों को खाना खिला सकता हूँ।
काश हमेशा ऐसा ही होता और लोग हमेशा खुदा की याद में होते।
समोइल, तुम्हें क्या हो गया है? बुजुर्गों और आम लोगों से तुम्हारी तर्क कलामी अभी भूला नहीं हूँ।
क्या हक के सिवा भी कुछ कहा है?
लेकिन हक गोई से हमेशा उमूर की इस्लाह नहीं होती है। हमें आम लोगों को लेकर चलना पड़ता है ताकि हमसे रंजीदा खातिर ना हो। दुरुस्त है कि वो भी अपने फराइज पे अमल नहीं करते, लेकिन मत भूलो कि हमारी ताकत उन्हीं से है।
पर किस कीमत पे?
इन्हीं हदियों, नजर व नियाज और उनकी मुख्तसर दीनदारी की कीमत पर।
तो फिर शरीयत मूसा में से क्या बचेगा काहिन बुजुर्ग, सिवाय दिखावे और ताबूत अहद के?
समोइल, जरा संभल के बात करो। तुम खुद जानते हो कि मैं अपने बेटों से ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ, और मुझे मालूम है मेरे बाद इस इबादतगाह के काहिन आजम तुम ही होगे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि बुजुर्गों और अवाम को अपने से नाराज और मायूस ना करो, वरना वो तुम्हारी पुष्ट पराही नहीं करेंगे। बेटों के जिक्र से याद आया कि वो इस वक्त लोगों की लाई हुई कुर्बानियों को जिबा करने में मसरूफ है। जाओ, जाकर उनकी मदद करो ताकि गोश्त सही तरीके से गरीबों में बढ़ जाए।
जो हुक्म कहा ने बुजुर्ग। काहिन आजम के बेटों पर हमारा सलाम।
सलाम समोए।
तो क्या आपने गरीबों में बांटने के लिए गोश्त के हिस्से बना दिए हैं?
हाँ हाँ, हमने देखा है, इस शहर में कबाब खाने के लिए हमसे ज्यादा मुस्तहिक कोई नहीं है। समोई,
क्या कह रहे हो? हम इबादतगाह के खादिम हैं, हमें इस गोश्त को छूने का हक भी नहीं। ये नजूरात गरीबों का हक है।
क्या तुम्हें बार बार ये याद दिलाना जरूरी है कि हम अजीम काहिन आजम के बेटे हैं? समझे?
तुम चाहे किसी के भी बेटे हो, मगर ये काम हराम है।
अच्छा, तो अब तुम हमें सिखाओगे? तुम वो जिसकी माँ ने गुर्बत और अफलास के मारे तुम्हें इबादतगाह में छोड़ दिया था। अरे जब हमारा बाप ही इसको इतना मुंह लगाता है तो इसी वजह से ये हमसे इतनी बदतमीजियां और बदकलामियां कर रहा है। अगर इससे पहले इसको सबक सिखा दिया होता तो दोबारा इस तरह जबान दराजी की जरूरत ना करता।
बस करो, फिर वही लड़ाई झगड़ा।
गलती समोइल की थी बाबा। ठीक कह रहा है भाई, वो हमेशा हमें तंग करता है।
बस बहुत हो गया, जाओ यहाँ से जाओ।
हाँ भाई चलो, नदी के किनारे कबाब भुनने में और भी मजा आएगा। कोई कबाब में हड्डी नहीं बनेगा।
मैंने तुम्हें अभी अभी नसीहत की थी।
लेकिन इन्हें ऐसा करने का हक नहीं है।
अरे वो जवान है, तुम अपने से उनका मवाजना मत करो। मानता हूँ कि वो भी इबादतगाह के खादिम हैं, लेकिन कभी कभी तफरी कर लें तो कोई बुराई नहीं है।
काहिन आजम, आप इस तरह कब तक लोगों के गुनाहों पर चश्म पोशी और पर्दा पोशी करते रहेंगे?
समोइल बेटा, सख्ती करने से इंसान लोगों की नजरों से गिर जाता है। इस तरह लोगों के दरमियान हमारा कोई मकाम नहीं रहेगा।
सिर्फ हक और रजाए परवरदिगार को मद्देनजर रखना चाहिए, ये बात आप ही ने मुझे सिखाई है।
जानता हूं कि तुम्हारी बात हक है, लेकिन क्या करें, इनका ईमान इतना कवि नहीं है। यही कि हमारा एहतराम करते हैं, मकामी शुक्र है, और क्या किया जा सकता है। हम तुम अपने आप को पाको पाकीज़ा रखें, लोगों पर उतना ही बोझ डालें जितना उनमें दम हो। अब जाओ अपनी उम्र की देखभाल करो। और हाँ, मैं ये कहने आया था तुम्हारे पास कि तुम्हारी वादा जल्द तुमसे मिलने के लिए आ रही है।
काहिने बुजुर्ग, क्या ये आप हैं?
समोइल।
काहिने बुजुर्ग, काहिने बुजुर्ग, क्या ये आप हैं?
बात है, दरवाजा खुला है, मशाले बुझी। समोइल कहाँ हो? वही जवाब क्यों नहीं दे रहे? समोइल, समोइल जवाब क्यों नहीं दे रहे? समोइल, ये तुम्हें क्या हो गया है?
किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा है।
किसने? दादा, तुमने जवाब दिया?
मेरी जुबान कासिर थी, सारा बदन गर्मी से जल रहा था, और साथ ही मेरा वजूद बर्फ की तरह जमा हुआ था, और एक शदीद नूर।
गर्मी, सर्दी और नूर। समोइल, तुम्हें यकीन है कि किसी ने तुम्हें पुकारा?
नहीं, नहीं मालूम वो ख्वाब था या कुछ और।
शायद ये खुदावंद आलम की तरफ से।
नहीं,
खुदा की कसम, इस दौर में खुदावंद आलम अगर किसी से गुफ्तगू करना चाहे तो तुमसे ज्यादा लायक कोई नहीं है।
क्या यह मुमकिन है कि मुझे फिर पुकारा जाएगा?
हाँ बेटा, लेकिन इस बार तुम जरूर जवाब देना, हो सकता है खुदा की रहमत हम पर नाजिल हो जाए। वक्त सहर है, उठो इबादत करते हैं।
खुश आमदीद माँ।
ये रोटियां दूध और शक्कर से मैंने बनाई हैं, वैसे ही जैसे तुम्हें पसंद है।
रोटी की यह खुशबू हमेशा आपकी और घर की याद दिलाती रहती है।
बचपन से ही तुम्हें शैलो की इबादत का मैं वक्फ कर दिया, तब से हर दिन तुम्हारी याद में तड़प रही हूँ। सिर्फ इसी ख्याल से मेरे दिल को सुकून मिल जाता है कि तुम ताबूत अहद के निगेबान हो।
मैं राजी हूँ।
तुम्हारा नाम समोहिल यानी खुदा से तलब किया हुआ इसीलिए रखा गया। तुम्हारे बाप की हमेशा से आरजू थी कि तुम एक दिन बड़े काहिन बनो और खुदावंद आलम के नज़दीक और अजीज, लेकिन कनानियों ने उन्हें शहीद कर दिया और वो अपनी आरजू को पूरा होते हुए ना देख सके। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम उनसे अपने बाप का बदला।
हमारे और उनके दरमियान एक जंग यकीनी है माँ, यकीन कीजिए एक दिन हम उन्हें जरूर शिकस्त देंगे। लेकिन हमारी और उनकी जंग हक को बातिल की जंग है। मैं महज खुदा के वास्ते उनसे जंग करूंगा, जाती इंतकाम के लिए नहीं। हमेशा बड़े और अजीम मकसद के लिए सोचना चाहिए माँ।
तुम हमेशा ईमान में दूसरों से बढ़तर रहे हो। अपनी और तुम्हारे बाप की आरजू को पूरा होते हुए मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, खुदा का शुक्र है।
समोइल, 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 बंदे खुदा।
बंदा हल्का बगोश है।
मैं जिब्राइल हूं और खुदा के हुक्म से तुमसे हमसुबन हूं। परवरदिगार के इज़्ज़त से तुम्हें नबुवत के लिए चुना गया है, ताकि नूर से जुर्मतों की तरफ जाने वालों को राह रास्त की जानिब हिदायत करो।
मैं कमजोर हूँ, क्या मैं ये कर सकूंगा?
याद रखो कि वही होगा जो खुदा का मंशा हो, जिसका हुक्म हुआ है उसकी अंजामदही में कोशा रहो। अब मैं अपनी वाकई न होने वाले आइंदे के अखबार से तुम्हें आगाह करता हूँ, जान लो और आगाह रहो कि
परवरदिगारा यकीन नहीं आता।
सलाम।
ताबूत अहद।
कहानी आजम, ऐसा अजीम वाकया हुआ है जो मेरी हदों से भी परे है।
ताबूत अहद कितना रोशन है। मैंने अपने बड़ों से सुना है कि ऐसा हजरत मूसा के दौर में हुआ करता था, और अब तुम्हारे साथ हुआ है।
जी।
तुमने जवाब दिया?
जी।
वो कौन था?
कहा कि जिब्राइल।
हाँ, तुम्हें यकीन है?
खुदा का लाख लाख शुक्र है, मुबारक हो आपको। वो वक्त आ गया जिसका मुझे इंतजार था। बनी इसराइल को निजात दिलाने वाले आप ही हैं। मुद्दतों से खुदावंदे आलम हम में से किसी से हम कलाम नहीं हुआ था। जिब्राइल ने मेरे दीन यहूद के काहिन आजम के बारे में कुछ नहीं बताया?
बताया, आपकी और आपके बेटों की मौत की खबर दी।
मेरी मौत और बच्चों की भी?
देखो सहर नजदीक है, इबादत गुजारी के लिए तैयारी शुरू कर दो।
लेकिन अभी तो आधी रात है।
गुनाह बहुत है और वक्त बहुत कम।
लेकिन आप?
ऐ खुदा, तेरी मर्जी पे खुश हूं, बस मेरी आकबत बखैर कर दे।